यात्रियों को हम अपनी जो चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। हम ये कह रहे थे कि यात्रा भगवान को केंद्र स्थान में रखकर की जाती है और पिकनिक जो है वो खुद को केंद्र स्थान में रखकर करते हैं। यात्रा में हम भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए जाते हैं। जिस धाम में जा रहे हैं उस धाम के भगवान को उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि साल में कम से कम एक बार अपना सारा काम धंधा नौकरी जो भी कर्तव्य है वो छोड़कर कम से कम 5-7-8-10 दिन के लिए क्यों ना हो, या अधिक हो तो अधिक हो, क्योंकि पूरी तरह से 100% भगवान के धाम में अपने आप को तन मन धन आत्मा से अर्पण करना चाहिए। और क्या कहा गया है कैसे करना चाहिए, से सब स्थाने हेरी बो आमी प्रणयी भक्ति संगे, भगवान के प्रणयी भक्तों के संग में हम लोगों को भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहिए, वहां पर बैठकर उनके लीलाओं का चर्चा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। उस जगह से हमें कुछ सार ग्रहण करना चाहिए, कुछ उपदेश, कुछ टेक होम मैसेज ग्रहण करना चाहिए। तो भक्तों के संग में प्रामाणिकता से नम्र भाव से धाम की यात्रा करने का विधान रूप गोस्वामी ने बताया है। ये 64 तत्वों में से 5 तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें से ये धाम निवास एक महत्वपूर्ण है। 5 कौन से हैं? सबसे पहले भगवान के नाम का जप, दूसरा भगवान के प्रामाणिक भक्तों का संग, तीसरा भगवान के विग्रहों की पूजा, चौथा श्रीमद् भागवत यानी भगवान के लीलाओं के विषय में जो ग्रंथ है उनका अध्ययन, और पांचवा है धाम निवास, और छठवां भी है तुलसी की पूजा। तो धाम निवास कई प्रकार का होता है। एक धाम निवास होता है धाम वासियों का, जो धाम में ही जन्म लेते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर उनका जन्म है, वो परम भाग्यवान जीव हैं। दूसरा धाम वास होता है जो जन्म कहीं और लेते हैं लेकिन एक बार सब कुछ छोड़कर धाम में घर लेकर धाम में बस जाते हैं, वो दूसरे प्रकार के धामवासी होते हैं। तीसरे प्रकार के धामवासी होते हैं वो यात्रा के लिए जाते हैं, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, महीना भर के लिए, जो भी है, घर कहीं होता है लेकिन धाम में जाकर कुछ दिन निवास करते हैं, दर्शन करते हैं, कथा करते हैं, यात्रा करते हैं। और चौथे प्रकार के धामवासी वो हैं जो धाम को हृदय में ग्रहण करते हैं और जहां पर भी रहते हैं वैसे धाम में ही रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी महाराज थे, वृंदावन धाम को छोड़कर अमेरिका गए, पाश्चात्य देश गए, जिसको बहुत ही उग्र देश माना गया, उग्र स्थान माना गया है, लेकिन हृदय में वृंदावन धाम को स्थित करके वहां पर लोगों को वृंदावन धाम का उन्होंने परिचय दिया, अनुभव दिया, सानिध्य दिया और लोगों को इतना प्रेरणा दिया कि वो लोग वृंदावन धाम में आए और कुछ लोग परमानेंटली बस गए, कुछ लोग बार बार आते रहते हैं। तो तीर्थी तिरवंत तीर्थंति कुर्वाणी यानी तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी यानी जिनके हृदय में धाम निवास है ये सर्वश्रेष्ठ धाम निवास है। तो जैसे भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि इस वक्त हमें कोरोना की वजह से वो मौका है कि आत्मा से, मन से और बुद्धि से और चेतना से वृंदावन की यात्रा करें, जो हमेशा होना चाहिए। हमेशा हमारा शरीर पहुंचता है, कभी कभी वहां जाकर भी मुंबई के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस बार जहां पर भी हम हैं वहीं रहकर शरीर की चेतना को कुछ समय भूलकर हम आत्म स्तर पर श्री वृंदावन धाम के दिव्य स्थानों का दर्शन करेंगे। तो ये आपको बड़ी दिव्य अनुभूति होगी, ये अंतरंग प्रवास होगा, अंतर्वेदी यात्रा होगी वृंदावन की। उसके बाद में कहा गया है कि धाम जो है वो, जैसे महाराज बता रहे थे, वो एक भौतिक स्थान नहीं है। भौतिक स्थान भी है, फिजिकली भी वो अवेलेबल है, लेकिन धाम सर्वोच्च स्तर पर एक चेतना की स्थिति है। धाम इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसको अगर ग्रहण करना है तो एक ही मार्ग है, वो है श्रवण का मार्ग। हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं कि धाम जो है वो कथा में प्रकट होता है। जब कथा होती है तो धाम का महात्म्य प्रकट होता है। इसलिए हमारी यात्रा के समय हमारी दिनचर्या को ऐसे हमको अरेंज करना है कि हम कथा के समय सतर्क रहें, बाकी समय पर हम अच्छी तरह सो जाएं, अच्छी तरह अपनी दिनचर्या को इस तरह से करें कि धाम की कथा के समय सतर्क रहें, अलर्ट रहें, अटेंटिव रहे, हमारा ध्यान पूरी तरह से रहे, क्योंकि उस कथा के माध्यम से ही धाम का गौरव कथा वक्ता के माध्यम से मुख से भगवान प्रकट करते हैं। गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि धाम की कथा जो है भगवान की कृपा से होती है, भगवान ही उस वक्ता के माध्यम से बोलते हैं। हम लोग तो खाली कुछ पढ़ते हैं, कुछ रटते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, लेकिन धाम प्रकट भगवान स्वयं करते हैं। और उसका भी एक रहस्य संतों ने बताया हुआ है कि जितनी हमारी साधना में शक्ति है, जितनी हमारी साधना प्रामाणिक है, जितनी हमारी साधना में हमारा मन लगा हुआ है, या जितनी साधना हमने की है अब तक, उसी के आधार पर उतना धाम प्राकट्य हमारे लिए होता है। धाम का प्राकट्य हमारी साधना से जुड़ा हुआ है। धाम प्राकट्य इज प्रोपोर्शनल टू अवर साधना। इसलिए हमारी चेतना अवस्था, साधना अवस्था जैसी जैसी स्ट्रांग है, उतना धाम का आविर्भाव प्राकट्य हमारे लिए अधिक तीव्रता से होता है। इसलिए हमने वो सुबह जप का कार्यक्रम रखा है। कारण क्या है, हम केवल मन से या शरीर से धाम की यात्रा, आंखों से फोटो देखकर यात्रा नहीं करना चाहते, हम आत्मा से यात्रा करना चाहते हैं। इसलिए पहले सुबह उठकर मंगला करेंगे 15 मिनट के लिए, फिर सब साथ में बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, आत्मा की तैयारी करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसके बाद में धाम का दर्शन करेंगे, तो धाम का पूरा गौरव हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। तो आप सब लोगों को विनती है कि आप लोग 3 दिन के लिए अधिक मास के इस दिव्य पर्व पर अपनी थोड़ी सी सुख सुविधाओं का थोड़ा सा त्याग करके सामान्य यानी कि सिंपल प्रसाद ग्रहण करके और जल्दी उठ के जल्दी सोकर दिन भर कोई बात करने के समय पर न्यूज़पेपर ना पढ़े, कोई प्रगल्प ना करे, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करे, धाम के विचार में रहे। अगर भोजन भी करे तो धाम के विषय में चर्चा करे, क्या देखा क्या सुना इसके बारे में। कारण ये है कि दिन भर उस धाम की चेतना बनी रहे। भले आप अपने बंबई के घर में बैठकर लंच खाते होंगे, लेकिन आप नंदगांव में लंच खा रहे हैं, ऐसा आपको कल सोचना है। भले आप घर में बैठकर डिनर खा रहे हैं, लेकिन बरसाने में परसों आप बैठ के वहीं पर डिनर खा रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव करना है। और जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा चल रहे हैं, वहीं पर बीच में हम लोग बैठकर प्रसाद भोजन कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव रखना है। तो चेतना से जब आप वहां पर रहेंगे तो आपको पूरा 100% लाभ उस धाम का हुआ। इसलिए मेरी आपको विनती है कि पूरी भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भगवान से प्रार्थना किए बिना श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। मुझे अभी भी याद है जब सबसे पहले 1986 में राधा गोपीनाथ मंदिर की सबसे पहली यात्रा हुई थी, उसमें भगवान महाराज ने हमको मथुरा में स्वागत किया था और वहीं पर बैठ के एक प्रवचन दिया था, जो आज हमारे लिए नामुमकिन है सोचना ऐसे कि मथुरा स्टेशन पर महाराज जी उधर ही बैठकर क्या कहते हैं उसको, वेटिंग रूम में प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि वृंदावन धाम में प्रवेश करना है तो हर क्षण श्रीमती राधा रानी के लिए प्रार्थना याचना करते रहना चाहिए। हृदय के अंदर के कोने में हमें सदैव राधा रानी की प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि हमें वृंदावन धाम में प्रवेश दें, वृंदावन धाम का वास दें, वृंदावन धाम में सेवा दें। इसके लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए आज से लेकर, अभी से लेकर कल परसों वर्षों 3 दिन तक, जब तक हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती है, उनका संपन्नता नहीं होती है, तब तक हमें राधा रानी को निरंतर प्रार्थना करनी है कि हमें आपके धाम में प्रवेश दे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति टिकट निकाल के या झूम के अरेंजमेंट करके या रट के या किताब पढ़कर धाम में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता है। धाम की अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी है, इसलिए पूरे वृंदावन धाम में राधे राधे ही बोलते हैं, कोई कृष्ण को नहीं पुकारते, क्योंकि वही सही अधिष्ठात्री है, वही वृंदावन धाम के नियंत्रक है, कृष्ण को भी वही नियंत्रित करती है और कृष्ण को भी वही सिफारिश करती है किसी किसको स्वीकार करना है। इसलिए हम उनको पुकारते हैं, उनको पुकार कर कृष्ण का ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हीं की कृपा से धाम में निवास करने का प्रयास करते हैं। कि हमको अभी से प्रयास करना है, प्रार्थना आरंभ करनी है कि अगले 3 दिन हमें नंदगांव, बरसाना और श्री गोवर्धन धाम में आत्मस्वरूप में, आत्मरूप में प्रवेश मिले और हमारी यात्रा सफल हो। इन्हीं शब्दों से मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और श्याम मोहन प्रभु को विनती करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम आप संपन्न करें।